اللهم صل على محمد وعلى محمد وعبده وبعده. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله وتطهير قلوبكم. مولانا تقيا حضرت امام علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام کا ارشاد ہے:
اللهم صل علی محمد وعلى محمد.
میں تمہیں دو چیزوں کی تاکید اور سفارش کرتا ہوں، دو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. ایک یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور دوسرا اپنے کاموں کو منظم کرو. یہ دو قول امام علی کے، یہ دو گولڈن ورڈز امام علی کے زندگی کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور آپ جس تنظیم سے وابستہ ہیں، یقیناً آپ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ تنظیم کی اہمیت کیا ہے. آپ سب کا تعلق آئی سو سے ہے، سب کا آسائن بدائے بول نہیں رہے نا، سب ڈر کے کیوں بول رہے ہیں؟ فخر سے بول رہے، ڈر کے نہیں فخر سے بول رہے ہیں. آرام دار بدائے صحیح صحیح، تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی ہاں ہے، فخر سے بتائیں کہ ہمارا تعلق اس الہی تنظیم سے ہے جو کہ ہم کوئنی سے محبت کرتے ہیں، جو رابر سے محبت کرتی ہے. تو تنظیمی آدمی جو ہوتا ہے وہ اس کی زندگی بھی ایک خاص نظم اور آرڈر کا شکار اس میں پایا جاتا ہے. تنظیم ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ تنظیم ہمیں مرتب کرنا، منظم کرنا، کاموں کو مینج کرنا سکھاتی ہے. تنظیم کبھی بھی ہمیں کاموں کو غیر منظم کرنا نہیں سکھائے گی. تنظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر کام کو بہترین طریقے سے اس کے وقت پر، کم سے کم وقت پر انجام دے، تاکہ اس کے زیادہ سے زیادہ بینیفٹس اور فائدے حاصل ہو سکے. ترجیح کو فائدہ ہی ہوتا ہے. اسی لیے آپ ایک شخص سے سارے کام نہیں کرا رہے ہوتے، بلکہ مختلف عہدے اور ڈیوٹیز بانٹ کر چاہتے ہیں کہ وہ افراد کیا کریں، وہ افراد اپنی اپنی ڈیوٹیز کو بہتر طریقے سے انجام دیں، تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدے اور اچیومنٹس حاصل کیے جا سکیں. لیکن اگر ایک ہی انسان کو سارے کام دے دیے جائیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کو، اگر دس آدمی مل کے وہ کام کرتے ہیں تو وہ ایک آدمی مل کے ایک کام کرے تو اس کو دس گھنٹے چاہیے، لیکن وہی کام دس آدمی ایک گھنٹے میں کر دیں گے. کیوں؟ تو کیا کہ ذمہ داریاں بٹی ہوئی ہیں. تنظیم کیا ہے؟ تنظیم ہمیں کاموں کو منظم کرنا سکھاتی ہے. اگر آپ یونیورس میں دیکھیں گے، کائنات میں دیکھیں گے، دنیا میں دیکھیں گے، ہر چیز ایک آرڈر میں ہے. ہر چیز ایک کس میں ہے؟ آرڈر میں ہے، ترتیب میں ہے، منظم ہے. آپ تھوڑا سا فرق بیٹھ جائیں تاکہ جو ہے وہ آواز بھی صحیح ہے. جب میں درود بھیجے محمد والا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج کہیں اور سے نکلا ہے، چاند اپنے آربٹ میں چکر لگائے گا، دنیا اپنے آربٹ میں مدار میں چکر لگائے گی، کلیپس نہیں کر سکتے، ٹکرا نہیں سکتے، ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ان کا آپس میں. ایسا نہیں کہ زمین کے اقرار چھا گئی ہوں، تھوڑی دیر رک جاؤں، بیٹھ جاؤں، سستا ہوں، سانس لے لوں. نہیں، جو ہماری زمین ہے اس کا ایک سفر کیا ہے؟ اپنے گرد ہے، اور ایک سفر کیا ہے؟ سورج کے گرد ہے. چنانچہ
जितना भी आप नेचर में उतरते चले जाएंगे आपको एक ऑर्डर नजर आएगा, तरतीब नजर आएगी, नज्म नजर आएगा। हत्ता कि इंसान के आज़ा में भी एक नज्म है। हाथ अल्लाह ताला ने ऐसे जगह बनाए हैं कि जहां पर इंसान इजीली अप्रोच कर सके किसी भी चीज को। ये जॉइंट्स जो अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में दिए हैं, ये जॉइंट्स इजीली अप्रोच के लिए है कि एक इंसान मैक्सिमम जो है अपने हाथ से सही इस्तेफादा हासिल कर सके। अगर ये जॉइंट ना होता तो किसी चीज को उठाकर मुंह में लाने के लिए आप मोहताज होते किसी दूसरे के हाथ के। सही मतलब मेरा हाथ अगर फोल्ड नहीं हो रहा है ऐसे है तो मैं कैसे मुंह की तरफ लाऊंगा? तो मैं कोई चीज ऐसा बनाऊंगा जो मेरे मुंह में आए। लेकिन अब तक नहीं बैंड दिया है, यहां पर एक खम बनाया है कि जो इजीली मेरा हाथ जो है वो मूव हो सके ताकि मैं अपने कामों पर जल्दी। फिर कलाई में खुदा ने लचक रखी है। क्यों? ये कलाई जो है ये क्या है? ताकि मैं अपने हाथ को मूवेबल बना सकूं। फिर अल्लाह ताला ने उंगलियों में यहां पे हथेली में देखिए क्या है, लचक है। ऐसा नहीं बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे ये हड्डी है बिल्कुल सख्त है, हथेली ऐसे नहीं, उसमें लचक है, फोल्ड हो जाती है। मसलन एक नाक की हड्डी है, एक कान की हड्डी है, अगर ये बिल्कुल सख्त होती तो जब आप सोए करवट से थक सहवा रहे, क्योंकि इंसान सोता है कान पर करवट लेता, अल्लाह ताला ने उसको फ्लेक्सिबल बनाया है कान की हड्डी को। क्यों बनाया? ताकि इंसान सो सके। नाक की हड्डी को उसी तरह फ्लेक्सिबल बनाया है। ये नाक की जो दो सुराख है नीचे क्यों रखे गए? ताकि मैं कम से कम जो है मिट्टी धूल जाए वो अंदर जाए, और जो जा रहा है वो भी नाक के बालों के जरिए से अल्लाह ताला ने रोक दिया। कहने का मकसद ये कि हर चीज में ऑर्डर मौजूद है। अगर ये ऑर्डर ना हो, ये नज्म ना हो, ये मुनज्जम बॉडी ना हो, तो फिर हमारे लिए कामों को अंजाम देना बहुत सख्त हो जाए। हत्ता कि ये नज्म आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में नजर आएगा। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ कायनात में, सूरज में, चांद में, यूनिवर्स में, बड़े बड़े प्लैनेट्स में नजर आएगा। नहीं, ये एटम जो सबसे डिवाइडेबल पार्ट ऑफ मैटर है उसमें भी आपको नजर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन उसमें भी अल्लाह ताला ने पॉजिटिव नेगेटिव रखे। अब ये अलग बहस है कि उस पॉजिटिविटी से और नेगेटिविटी से क्या खुदा करना चाहता है, अब ये पूरी एक अलग साइंस है, मैं उस पर डिस्कस करना नहीं चाहता हूं। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन उस एटम में भी जो अनडिवाइडेबल है, ना काबिले तकसीम जर्रा है, जो आंख से नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता, उसमें भी अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म रखा है। नाइंथ आपने पढ़ी होगी, एमीबा पढ़ा होगा आपने, और कौन सा जानवर होगा पैरामिशियम के साथ? जी
पैरामिशियम
होता है। उसमें भी जिंदगी का एक क्या है, निजाम मौजूद है। और फिर दो एमीबा मिलकर एक एमीबा बन जाते हैं। जी अब मैं अपनी मेमोरी को रिकॉल करूं जब मैंने नाइंथ में पढ़ा था। यानी ऐसा नहीं कोई चीज भी मकसद हो, अल्लाह ताला ने एक ऑर्डर दिया, एक नज्म दिया है, आप जिंदगी में क्या है देखेंगे। मामूलन जब इंसान चलता है तो उसकी टांग के साथ उसका हाथ मूव करता है। कभी ऐसा नहीं होगा कोई इंसान मजा मूव करे इस तरह हाथ को ऐसे करके, नहीं। नॉर्मली इंसान मूव करता क्या करता है? उसका हाथ मूव करता है। क्यों? ये क्यों है? ये अल्लाह ताला ने इसलिए रखा है ताकि इंसान चलने में आसानी हो। यही वजह है आप देखेंगे ब्रिजेस जो बनाए जाते हैं उनमें जॉइंट्स दिए जाते हैं। क्यों? इंजीनियर है कोई?
अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पड़ती है और मतलब रोशनी पड़ती है उसके ऊपर, गर्म होता है तो गर्म होने से मतलब एक्सपेंड होते हैं, एक्सपेंड अगर उसके बीच में मतलब जगह नहीं होगी तो मतलब उसमें शिकाव भी पड़ सकता है।
ये भी एक वजह है, लेकिन असल वजह क्या है? असल वजह ये है कि जब ब्रेड हो रही होती है, ये मुसलसल गाड़ियां गुजर रही होती हैं, तो उससे उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इर्तआश, वाइब्रेशन होती है। अगर एक जॉइंट, अगर कोई जॉइंट ना हो यहां से यहां तक, मसलन एक किलोमीटर दो किलोमीटर के पुल में, ये 500 से 600 मीटर के पुल में, तो वो जो वाइब्रेशन है ना, वो उसकी लाइफ को कम कर देगा। ये जॉइंट्स जो होते हैं ना, वहां पर कपरेट हो रही होती है, तो फौरन हो दिया जाता है, डिसऑर्डर हो जाए ना, यानी आप फिर अपने नॉर्मल अंदाज से चले, एक रिदम में, एक ये मार्च होता है ना वैसे नहीं, क्यों? ताकि ये पुल जो है, ये जो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ, ये बर्दाश्त कर सके। अब इसके लिए साइंस क्या है, इस साइंस ने इस चीज को रखा, ये वजह कि आपने देखा होगा कि बाद ब्रिजेस होते हैं जो हिलते हैं, हिलते हैं उनमें एक लचक होती है, अगर लचक ना हो तो वो पुल टूट जाए। मसलन जो आजाद कोटरी का है, कोटरी का जो पुराना पुल है, वहां से आप गुजरे तो बाकायदा आपकी गाड़ी ऐसी मूव होती है। अगर आप गाड़ी रोक दें और बराबर वाले पुल से जो है गाड़ी गुजर रही है, तो बाकायदा ऐसे मूव होता है कोटरी का पुराना वाला पुल जो रेल के साथ बनाया गया है। क्यों है ये क्या है? ये ऑर्डर को बेहतर से बेहतर और मुनज्जम से मुनज्जम करने के लिए होता है। तो यूनिवर्स के सबसे छोटे अनडिवाइडेबल पार्ट से लेकर एटम से लेकर कायनात के यूनिवर्स तक जहां आप चले जाएं, अब ये हमारा यूनिवर्स है, इसमें कितने सैयारे, कितने सितारे, कितने प्लैनेट्स मौजूद हैं, और इसी जैसे कई गैलेक्सीज हैं कि जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए हैं। ये सब अल्लाह ताला ने क्या किया, एक ऑर्डर में रखा है, और इन सब में से सिर्फ एक को इरादा और इख्तियार दिया है। वो कौन है? कौन है?
अर्थ
जी, इंसान। सिर्फ एक मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने इस खाने में कोई चीज दी है जिसका नाम अकल है। अब ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, अकल होती का है आपके लिए, दिमाग में होती है? अकल दिमाग में नहीं होती है। कहीं बड़े अच्छे सी टॉपिक बात में लगी, एक इंसान है कि जिसे अल्लाह ताला ने क्या दिया है, इरादा दिया है, इख्तियार की पावर दी है उसको, उसको सोचने समझने का एक सलाहियत दी, स्किल दी है अल्लाह ताला ने, और इंसान से चाहा कि वो अपने कामों को मुनज्जम करे। आज आप मसलन आप देखते हैं कि आप पानी में कोई चीज रखते हैं डूब जाती है, कागज का हवाई जहाज बनाते हैं, थोड़ी देर होता है चंद सेकेंड के लिए गिर जाता है, मनोवजनी टन, मनोवजनी कितना कितना भी होता जा सकता, कैसे हो रहा है हवा में, शिप कैसे पानी पे चल रहा है, ये क्या है, ये किसकी तकलीफ है? ये इंसान की तकलीफ है कि जिसने अभी तक अपने माइंड को सिर्फ 2% इस्तेमाल किया है, सिर्फ 2%, और जितनी भी इस पर रिसर्चेस हो रही हैं वो सब इल्म, असल इल्म के मुकाबले में जो अल्लाह ताला ने मोहम्मद आले मोहम्मद को अता किया है 90% भी नहीं है। 98% इल्म अभी इमाम ज़माना के पास मौजूद है, और मैं आपको बताऊं कि अब तक जितनी भी तरक्की हुई है वो उस 2% के भी 20% हिस्से से तरक्की करने से हुई है। अब आप तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला यानी कितना इंसान के इरादे और इल्म और इंसान की नॉलेज को अहमियत दी है। बोला यही फरमा रहे कि उसी को बिल्तक्वल्लाह व नस्ल अमरकुम, मैं तुम्हें दो चीजों की सिफारिश वसीयत कर रहा हूं कि अगर तुम तकवा के जरिए से एक दो अपने कामों को मुनज्जम और मैनेज करने के जरिए से अगर कर सको तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब जिंदगी। सिर्फ ऑर्डर में नहीं आना है, मुनज्जम नहीं करना है, तकवा के जरिए से मुनज्जम करना है। तकवा क्या है? अल्लाह के लॉ को, अल्लाह के कानून को मद्देनजर रखना है। अभी मैं आ रहा था सामने से मोटरसाइकिल वाला रॉन्ग साइड आ रहा, मुझे मजबूर है अपनी गाड़ी साइड में करनी पड़ी ताकि उसको जगह दे सकूं। मेरे पीछे गाड़ी वाला था, मैंने उससे अपनी गाड़ी को बचाया, उसको बचाया। ये अगर खुदा ना खासा टकरा जाता, जख्मी हो जाता, कितना नुकसान होता, मेरा भी नुकसान होता, उसको भी नुकसान, दो तीन आदमी जो उसमें सवार थे उनको भी नुकसान होता। अगर इंसान कानून को मद्देनजर न रखे, लेकिन ये इंसान अगर सामने कोई सरदरी बादशाह खड़ा हो फिर ये खिलाफ वर्जी करेगा? नहीं करेगा। क्यों बताइए? वो अपने कानून का इस्तेमाल करेगा, वो रोकेगा, चालान करेगा मसलन, ठीक है, कई नकल हो रही है मसलन, और वो तो नकल जायज नहीं है। नकल करना जायज है? नहीं, ना जायज है। इन शरण हराम है नकल करना। और कोई टीचर आ जाए कोई करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तक्वा क्या है? अल्लाह का कानून है। क्या मतलब? यानी आपने क्या करना है? रॉन्ग और राइट की पहचान करनी है। मसलन यहां से यहां तक आपको जाना है और यहां स्क्वायर्स बने हैं मुख्तलिफ, जैसे डाइस होते हैं ना, ठीक है। और जैसे ही आप उस पर हल्का सा पैर रखेंगे या वो आपके पैर को खींच लेगा या आपको आगे तक पहुंचा देगा। अब इंसान कितना ज्यादा कॉन्शियस होगा कि मेरा पैर सही डायल पर आना चाहिए ताकि मैं मिसाल के तौर पर पहुंच जाऊं। जैसे आप देखते हैं कि पानी में मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें रखी हुई होती हैं जिनके ऊपर से गुजर कर इंसान को तेजी के साथ काम एक मंजिल तक पहुंचना होता है। थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, इंसान क्या होता है, पानी में गिर जाता है। अक्सर आप देखते होंगे गेम्स आ रहे होते हैं, नहीं यही सूरत हाल क्या है हमारे साथ है कि हमें अल्लाह के कानून को मद्देनजर रखना। अल्लाह का कानून क्या है? हलाल और हराम। हराम क्या है? उसे पहचानना है। हलाल क्या है? उसे पहचानना है। हलाल और हराम की शिनाख्त अगर एक नौजवान को हो जाए तो फिर वो उसकी जिंदगी गुजारना आसान। इसी को कहते तक्वा। इंशाल्लाह कि आप अपनी अमल जिंदगी में जब भी कोई काम करना चाहते होंगे आप हमेशा चीज को मद्देनजर रखोगे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने नजरुल आलम में खुतबा मौला अली का है, जिसमें मौला ने फरमाया कि पास टाइम में मेरा दीन भाई था, अहदमाजी में मेरा दीन भाई था, वो इसलिए मेरी नजरों में कद्र कीमत रखता था कि दुनिया उसकी नजरों में बहुत छोटी थी, तो दुनिया में अहमियत नहीं देता। और फिर मौला कहते हैं, अब जो मैं बात सुना वो अहम है, मौला का पूरा खुतबा अहम है। जब भी कोई काम करता था तो उसके सामने दो राहें होती थी, एक राइट और एक रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, गलत और सही, हक और बातिल। वो क्या करता था? वही देखता था इनमें से कौन सा रास्ता शैतान की तरफ जाता है और कौन सा रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। और ये सिर्फ मौलाली के दोस्त के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए। हम सुबह जब उठते हैं हमारे सामने क्या दो वे होती हैं, या राइट वे या रॉन्ग वे, या हक रास्ता या बातिल रास्ता। हम किसको अपनाते हैं? ये हमारे लिए। कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वालिदैन के सामने जा रहे हैं, दो रास्ते हैं, या इताअत करो वालिदैन की, खुश करो, या डिसएग्री हो जाओ उनसे, उनको नाराज कर दो, शैतान का कहना मान लो। खाना खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कोई भी चीज आप जो कर रहे हैं 24 घंटे में, 24 घंटे में अगर सेकंड्स लगाए जाए, एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स। 3600 सेकंड को 24 से मल्टीप्लाई करें कितना बनता है? जल्दी से करो, 3600 मल्टीप्लाई बाय 24, 86,400 seconds in your life every day. 24 घंटे में 86,400 सेकेंड। हर सेकेंड पर आपके सामने दो वे होंगी। अब आप देखिए कितना सख्त, कितना कंपटीशन है। चले सोने के टाइम निकालना है, हद तक इंसान, आप देखिए वॉशरूम जाना है इंसान को, ये वॉशरूम जाना होता एक नेचुरल एक काम है, उसमें कोई काम नहीं करना पड़ता इंसान को, जाके मसलन अपने पेट को खाली करना है, ठीक है ना, यूरिन पास करना है मसलन, उसमें कोई काम नहीं है, जाना है। उस जाने में भी राइट और रॉन्ग है, दुनिया का सबसे छोटा सा काम है, तवज्जो रखिएगा। जिसके लिए इसके लिए वाजिब अहकाम है, मुस्तहब अहकाम है, सुन्नत अहकाम है, आदाब है, हराम है। यानी उस वॉशरूम जाने के लिए, बैतुल खला जाने के लिए भी वाजिब है, हराम है, मुस्तहब है, मकरूह है, छोटे से काम के लिए। पहले दाखिल हो रहे हो तो उल्टा पैर रखो, जब वहां से वापस आ रहे हो तो सीधे पैर बाहर रखो, दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह कहो, मसलन दुआएं हैं उसकी। यानी उस छोटे से काम में भी क्या राइट और रॉन्ग है, मकरूह और मुस्तहब है। इसी तरह हर चीज में हमारे लिए क्या हक और बातिल है हर लम्हे। इसलिए क्या कहा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, फतवंदा हमें सिरातल मुस्तकीम की हिदायत फरमा। यानी हर लम्हे 86,400 सेकंड 24 घंटे में, और एक घंटे में 3600 सेकंड, 3600 सेकंड में मुसलसल मेरी तवज्जो क्या होनी चाहिए, मैं सही वे पे काम करूं। मसलन आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने 15 मिनट की 10 मिनट की नमाज पढ़ी, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब आपके दिल चाहे थोड़ा सा राइट पे हो जाऊं, थोड़ा सा लेफ्ट पे हो जाऊं, आपने बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू यूं कर दिया आपने, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नमाज पूरी हो जाएगी जी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जो काबा था, काबतुल्लाह था, वहां से आपने फेस हटा लिया, अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू हु तक भी जो है अगर आपने अपना चेहरा मोड़ लिया, नमाज पूरी बातिल हो जाएगी। जैसे एक माइनस प्लस से पूरा इक्वेशन जो है वो जी क्रॉस लग जाता है उसका, एक माइनस प्लस से, तवज्जो कीजिएगा। आप कहेंगे जरा एक बार हमें तो क्या होगा, था तो हू का जो हे है उसमें मैं राइट या लेफ्ट हो गया, नहीं, जब एक माइनस प्लस से पूरी इक्वेशन बातिल हो सकती है, तो एक हे को रहमतुल्लाह व बरकातहू कहने में अगर आप राइट और लेफ्ट हो जाए, यदि जो राइट बात है उससे मुनहरिफ हो जाए, यह तकवा। यानी हमें अपनी जिंदगी में देखना है, आप नौजवान हैं, जो सबसे ज्यादा आपको तकवा इख्तियार करना है वो आपकी जेब में है। देखिए आपकी जेब में कुछ है, आपकी जेब में निकाल के बाहर की तरह, जिन जिनकी जेब में है, सबसे आखिरी इबादत हमारी क्या होती है रात को, व्हाट्सएप पहले ही सलाम के चेक करते हैं, सबसे आखिरी इबादत जी, पूरा घर सो जाता है, ये अंधेरे में लगा हुआ है। 2018 की रूही जब ऊपर पहुंची ना, तो फरिश्ते हैरान हो गए कि सब झुका हुआ सबका और सब यूं कर रहे हैं, और ये क्या, और कहीं यहां से मोबाइल ले लेंगे, इतने नशे ही हो गए ये मोबाइल के, क्या कहते हैं नशे को, एडिक्टिव, ठीक है ना, इतने ये मस्त हो गए कि ये बस उंगलियां चल रही हैं। आखिरी इबादत क्या होती है हमारी व्हाट्सएप की, सबसे पहली इबादत क्या होती है मोबाइल व्हाट्सएप। और ये एक्सपेरिमेंट किया गया यूथ से, जब सोए सारा जा रहा था उनका मोबाइल थोड़ा सा छुपा दिया, हंसी मजाक में भी आपके खेल देता हूँ, मतलब सुबह उठता है सबसे पहले ये सोते में तकिए के नीचे हाथ मारता है, तकिया फेंकता जी, उलट रहा उलट रहा, कहाँ गया मोबाइल, उसको मिल जाता है, सांस नहीं लिया हो जाए उसको जी, सांस आने लगे, ब्रीथिंग होने लगती है उसको। ये चीज आपको प्रोग्राम भी कर सकती है और ये चीज आपको राइट पाथ पे भी ला सकती है। ये तकवा, यानी जो आप सेंड का बटन दबा रहे हैं, इसको कुरान ने कहा है फमन यअमल मिथकाल ज़र्रतिन, ज़र्रे के बराबर, ज़र्रे के बराबर यानी इस सेंड का बटन दबा के क्या भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो, इसका भी हिसाब होगा। ये हिसाब यानी इंसान स्टैंड करने में, सुनने में, देखने में, बोलने में, उठने में, खाने में अल्लाह के खाने को यह तकवा। मौलाना कह रहे हैं अपनी जिंदगी को आदि बनाओ, अपनी जिंदगी को आदि बनाओ, कानून कानून का आदि बनाओगे कभी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो इंसान बेकानूनियत आदि हो जाए, आप देखते हुए लोग अपनी अपनी दुकानें आदि कर लेते हैं, जी अभी थोड़ा हाल चल हुई लोगों ने शटर गिरानी शुरू कर दी और अपने क्या है वो जो छज्जे बने हुए थे सब गिराने शुरू कर दिए, दुकानें आगे बढ़ाई हुई। लेकिन जो इंसान नॉर्मल है वो परेशानी नहीं होगा क्योंकि वो उसने कभी कानून के खिलाफ वर्जी नहीं की। तो मौला जी क्या कह रहे हैं कानून को एक दो नज्म अमर को कामों को मुनज्जम करो। ये तंजीम हमें कामों को मुनज्जम करना सिखा रही है। तुम्हारा पढ़ाई का वक्त मालूम होना चाहिए, तुम्हारे कॉलेज का वक्त, सेल्फ स्टडी का वक्त, कंबाइन स्टडी का वक्त, ग्रुप स्टडी का वक्त मालूम होना चाहिए। तंजीम में तुमने जाना है कितने घंटे देना है मालूम होना चाहिए। मस्जिद में तुम जा रहे हो मालूम होना चाहिए। दोस्त के साथ घूमने जा रहे हो मालूम होना चाहिए कि तुमने कितने घंटे देने नहीं के बस चले जा रहे चले जा रहे। ये मस्जिद गए नहीं ये जाते तो फिर जी बोला कि आना पड़ता है भाई बाहर आ जाओ तो मस्जिद बनाने वाली है। तंजीम में आ गए नहीं आएंगे तो इतना काम करेंगे कि दिन रात एक कर देंगे नहीं। तंजीम में काम का वक्त मुअय्यन होना चाहिए, स्टडी का वक्त मुअय्यन होना चाहिए, मोबाइल का वक्त मुअय्यन होना चाहिए। वो कहते हैं ना अल्लाहुम्मा फक कुल असीर, हमारे दोस्त कहते हैं आप ये कहें अल्लाहुम्मा फक कुल असीर मोबाइलात, मोबाइलों को असीरों को। बजाय तो मोबाइल आपकी जेब में है लेकिन आप मोबाइल की जेब में है जी, उसकी अलामत क्या है? उसकी अलामत ही मोबाइल है। हर थोड़ी देर बाद मोबाइल निकलेगा बात करें जी। अच्छा अब लैंग्वेज क्या हुई हमारी? हूं ये हूं जो है ये मल्टीपर्पज है, हमारा एक वर्ड याद हुआ है जो इस सोशल मीडिया का हूं। अब आप कह रहे हैं बातें कर रहे हैं रोटी लिया हूं, नमाज पढ़ लो हूँ, नमाज पढ़ लो हूँ, दोस्त आ गया हूँ, दूध वाला आ गया हूँ। ये हूँ जो है ये हमारा एक कॉमन वर्ड हो गया है मल्टीपर्पज। हर थोड़ी देर बाद मोबाइल निकलेगा और हमने चेक करना है। अच्छा आप वजीर आजम हैं, मिनिस्टर हैं, क्या है? किसी ने कॉल करनी थी, ये जो हर थोड़ी देर मोबाइल चेक हो रहा है ना इसका मतलब है कि तुम इसके बीमार हो गए। इसके बीमारों को इसका आसान तरीका यह है कि जब घर में आए ना देखना चाहते हैं कि आप बीमार हैं इसके ये नहीं है, ये आपकी जेब में या आप मोबाइल की जेब में। इसका तरीका यह है कि मोबाइल को अनलॉक करके साइड टेबल पर रख दें एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। अगर आधे घंटे में जितनी एसएमएस अलर्ट्स आए और आपने कोई तवज्जो नहीं की इस मामले में आप परफेक्ट इधर मोबाइल बजता होता है धड़कने लगता है सही दिल धड़कने लगता है। अच्छा एक और बीमारी का अनलॉक करने के लिए, अनलॉक करके आप क्या छुपाना चाहते हैं? कहते हैं कि मोमिन वो है जिसका मोबाइल उसकी पूरी फैमिली इस्तेमाल करे। अमूमी में तो यूनिट्स के अराजीम के साथ तो सलवार तो वहाँ भी जाती है ना, सबने कबूल कर लिया। हमारे जमाने में तो ऐसे ही होता था। ये क्या है? ये आपको अल्लाह की तरफ भी ले जा सकता है और अल्लाह से दूर भी ले जा सकता है। तो मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था? आधे घंटे के लिए रखने से, आधे घंटे फिर देखेंगे आपके दिल कितना मचल रहा है। इसका मतलब है कि आप इसकी जेब में हैं, ये आपकी जेब में नहीं है। अगर आप आधे घंटे के लिए इसको रख सकते हैं, घर में आने के बाद रख दें, एक घंटे के बाद चेक करें। जरूरी हर कॉल को रील कॉल, मगर कोई जरूरी इमरजेंसी कॉल हो बगैर हमारे लिए हर कॉल का जवाब देना वाजिब होता है। लेकिन हम ही वजीर आजम है, अपना मुल्क चल रहा है तो बस हम अपनी वजह से चल रहा है। कहने का मकसद ये कि ये मोबाइल तो गया, जब्त हो गया, दूसरा ये कि ये जो हम अनलॉक करते हैं, इसको लॉक करते हैं, क्या छुपाने जा रहे हैं? क्या इमाम से कोई चीज छुप सकती है? अगर मसल इमाम आए और यूज से कह रहे हैं कि मेरे नौजवानों तो मेरे लिए क्या कर रहे साइन जान हाजिर आपके लिए साइन ताबेदार होदार खिदमत गुजार और अगर क्या चलो अपना मोबाइल दे दो सर मोबाइल मोबाइल एक मिनट है प्लीज डिलीटिंग करना शुरू हो गई है डिलीट वो डिलीट ये डिलीट वो नहीं बगैर कुछ डिलीट किए हुए अपना मोबाइल दे दें अब कितने लोग होंगे जो अपना मोबाइल देंगे एक टेस्ट करें थोड़ा सा अपने साथ क्या हम अपना मोबाइल इमाम को दे सकते हैं इम्तिहान अगर दे सकते इसका मतलब ये तकवा आप मानसन तो अर्ज कर रहा है कि तंजीम मुनज़्ज़म करने से काफी हर टाइम मखसूस होना चाहिए मोबाइल का भी टाइम होना चाहिए इसका मतलब कि आप बीमार हो गए हो आप इसकी नशे में गिरफ्तार हो गए हो नज़्म यह है कि पढ़ाई का टाइम होना चाहिए इतने घंटे सेल्फ स्टडी इतने घंटे कंपनी ग्रुप स्टडी इतने घंटे कॉलेज में इतने घंटे मस्जिद में इतनी देर तंजीम में इतनी देर मसल वालदैन के साथ अगर ये है इसका मतलब है कि आपने मौलाना अली की वसीयत को समझा है और आपने तंजीम से सही फायदा हासिल किया है लेकिन अगर आप ने तंजीम पर रहने के बाद कामों को मुनज़्ज़म नहीं किया जब चाहे किताब उठा ली जब चाहे इसमें चले गए जब चाहे मुझे चले गए जब चाहे कोई काम कर लिया नहीं इसका मतलब है कि आपने तंजीम से वो चीज नहीं सीखी जो सीखनी चाहिए थी तो कोशिश होनी चाहिए आईएसओ के नौजवानों की जिनका एक माजी है जिनका शानदार माजी है जिन्होंने बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की बड़े बड़े मेडल्स हासिल किए बड़े बड़े मकाम इल्मी मदारिज को तय किया हम उसको बाकी रखें अपनी तालीम को अपने किरदार को अपने अखलाक को अपनी इंफरादी और जज्बाई जिंदगी को और दो काम जो है तीन काम हमें करने एक ही नमाज की पाबंदी जहां पर भी हो नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी अपनी लाजिम वाजिब समझो फजर जोर असर मगरिब इशा जहां अजान हो आप अजान से पहले बावजूद हो चुके हो जहां आपको मौका मिले आप अव्वल वक्त फर्स्ट टाइम फजीलत के वक्त नमाज अदा करें अगर जमात मौजूद है और थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं जमात में शामिल हो जाए जमात नहीं है जहां पर आपको मौका मिला है आप नमाज अदा करें एक ही दो कुरान की तिलावत तर्जुमे के साथ और तीन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से तवस्सुल इमाम ज़माना को पुकारना दुआ पढ़ना इमाम से इमाम की दुआ अहद पढ़ना किसी भी तरीके से इमाम से तवस्सुल ये तीन काम ऐसे जरूरी हैं कि जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को मानवी जिंदगी को मुनज़्ज़म नमाज पहले वक्त कुरान की तिलावत तर्जुमे के साथ और इमाम ज़माने से तवस्सुल बाकी आप तर्जीमी काम करते हैं करें पढ़ाई करते करें ये तीन काम लाजमन होने चाहिए आपकी जिंदगी में कि अगर आप ये कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप खुदा और अहले बैत अलैहिस्सलाम या मोहम्मद अली मोहम्मद अलैहिस्सलाम से जुड़े हुए हैं मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करूँगा और आपकी तर्जी में नौ है तो कोशिश करें कि सिर्फ नए सदर के आने से तर्जी में नौ नहीं होती है तर्जी में नौ कब होती है जब मेरा दिल नौ नौ यानी नया न्यू जब इरादे नए हो जाए जब हौसले नए हो जाए हर दिन समय निकलता है दिल डूबता है मेरे लिए हम सब कब मेरे लिए नया दिन होगा कि जिस दिन मैं चेंज होगा जिस दिन मैं इरादा करूँगा कुछ करने का तंजीम नौ का मतलब क्या है आप एक सदर पटाए दूसरे को ले रहे हैं तंजीम नौ नहीं है ठीक है एक नया चेहरा आया है अज़्म नया होना चाहिए लगन तड़प हौसला स्पिरिट नहीं होनी चाहिए ताकि आप अपने मकसद को इस तालीमी साल में यानी 2018-19 में पा सकें ये है तंजीम नौ और ऐसा नहीं है कि बेचारे ये एक को बनाए होता असलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह फिर जी और सदर साहब बेचारे अलग लगे हैं
वही खींचे जा रहा है। इससे पहले कौन सुधर था? ठीक है, देखिए वहां पे अपनी इस्लाह करेंगे कहां कहां गलतियां हुई हमसे, कहां कहां हमने अपने वादों को कहकर जबान पे लाकर अमल नहीं किया, क्यों टीम वर्क नहीं बना सके हम। ये तो खुदा का शुक्र अदा करें कि आपको एक ऐसी तरजीह से व्यवस्था किया कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अगर टीम वर्क आप में नहीं आया, कोई एक आदमी लगा हुआ बेचारा मालदार के सर के कोई घोड़ी की तरह खींचे जा रहा है इसको यूनिट को, नहीं गलत है। टीम वर्क बनाना है, टीम वर्क करना है। तंजीम नौ ये हौसला स्पिरिट लगन उम्मीद नहीं होनी चाहिए, काम करने का जज्बा, ताकि इमाम जमाना जो आप और मेरा इंतजार कर रहे हैं, एक उम्मत का इंतजार कर रहे हैं, वो हम बन सके बना सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको इमाम जमाना के इंकलाब की राहें हवाल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह आई सब नौजवानों को माशरे का बेहतरीन मुफीद और कारामद नौजवान करार दे, हमें इमाम जमाना के इंकलाब की राहें हवाल करते हुए उनकी दिल की खुशनूदी का सामना करने की तौफीक अता फरमाए। जो हमारे गुज़िश्ता इब्न सदर और साबिक़ सदूर यूनिट्स के हम सब की तौफीकात में जरूर फरमाए, जो आने वाले दोस्त हैं उन सब की कोशिशों में और उन सब की मेहनतों को समरबार करने में अल्लाह ताला उनको तौफीकात अता फरमाए, ताकि वो अपनी तालीम के साथ साथ अपनी तंजीम और इमाम ज़माना के मिशन के लिए मुफीद साबित हो सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم